ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् चौथा स्कंध 24वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेत् मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधनैः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिवजी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: मुक्ति का अर्थ है कर्मों के फल से मुक्त होना। जैसा कि श्रीमद् भागवत में आया है, मुक्ति ही हित्वान्विता रूपम्। मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी कार्यों की परित्याग और अपनी वैधानिक स्थिति में पहुंचना, स्वरूपेण व्यवस्थित ही। इस बद्ध अवस्था में हम एक के बाद दूसरे काम में उलझे रहते हैं। कर्म बंधन अर्थ का है, अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्मों में लगा रहता है, जब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। किंतु भक्ति योग सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेशानुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी सत्ता के निर्देशानुसार कर्म करते हैं तो हम कर्म फलों से नहीं बंधते। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे, अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदार न था। जहां तक भक्ति का प्रश्न है, श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही अच्छा है जितना कि शरीर मन तथा इंद्रियों से कर्म करना। जब इंद्रियों का उपयोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देती है। किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो वे भक्ति को पुष्ट करती हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिवजी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। शिवजी ने भगवान की स्तुति राजा प्राचीन भरिषत के पुत्रों को सुनाया और जैसे कि उन्होंने स्वयं बताया है कि यह स्तुति उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से सीखी थी। ब्रह्मा जी ने सारे प्रजापतियों को, उनके पुत्रों को यह स्तुति सिखाई थी प्राचीन काल में। और यह स्तुति अब शिवजी प्रचेताओं को सिखा रहे हैं और आखिर में फलश्रुति दे रहे हैं, बताते हैं कि जो जल्दी सुबह उठकर प्रातः काल में हाथ जोड़कर, अर्थात भक्ति भाव से, हाथ जोड़ने का अर्थ है भक्ति भाव, नम्रता, जो इस स्तुति का गान करता है और गान करते करते सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वो बहुत ही शीघ्र कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्तुतियां, प्रार्थना, वंदना हमारे लिए सुनना, जपना और सुनाना अति आवश्यक है। प्रहलाद महाराज ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में, उनमें से एक अंग वंदनम का भी है, अर्थात भगवान को सुंदर स्तुतियां, प्रार्थना, वंदना अर्पण करना। और भक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है, किसी भी समय किया जा सकता है और दिन भर करना चाहिए। परंतु यहां विशेषकर शिवजी बतला रहे हैं कल्ये कि प्रातः काल के समय हमें उठकर ये प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम सबको जल्दी सुबह उठना चाहिए, उठकर भगवान के गुणगान में अपने चित्त को केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए कई कारण हैं। जल्दी सुबह उठकर हमें ये सब क्यों करना चाहिए? पहली बात कि रात को जब हम सोते हैं तो ये एक तमोगुण का कार्य है। जिस स्थान पे हम सोए हुए होते हैं वो भी गंदा हो जाता है, क्योंकि हम 6 घंटे 7 घंटे वहां सोए हुए रहते हैं निद्रा की अवस्था में। और फिर शरीर तो दूषित होता ही है, लेकिन मन भी, क्योंकि कई बार नाना प्रकार के सपने आते हैं, कई बार बुरे सपने भी आते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि भूत हमारा पीछा कर रहा है, नाना प्रकार के सपने आते हैं हमारे मन में। तो सुबह को जब उठते हैं तो इस तमोगुण के प्रभाव को दूर करने के लिए हम ये स्तुतियां करते हैं, तुरंत भगवान का नाम जाप करते हैं। ऐसे शास्त्र में भी बताया है कि जैसे ही हमारी नींद खुल जाती है, बिस्तर में लेटते हुए भी और उठते उठते हमें भगवान का नाम लेना चाहिए या ये प्रार्थना करनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाचल जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि एक कट्टर मायावादी थे, उनको कृष्ण भक्त बनाया और सारे जगन्नाथपुरी में बात फैल गई। सभी को आश्चर्य लगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे एक व्यक्ति ये कैसे भक्त बन गया। और एक बार महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर प्रातः काल में गए। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य नींद से उठे नहीं थे, लेकिन महाप्रभु ने दरवाजा खटखटाया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने यह आवाज सुन ली तो उठे, उन्हें पता नहीं था कि महाप्रभु दरवाजे पर खड़े हैं। तो जैसे ही वो उठे, उठने की आवाज सुनाई पड़ी, पलंग की आवाज, और महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से सुना बाहर से, सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण कृष्ण करके उठ रहे हैं। मतलब जैसे ही वो नींद से उठे, पहले शब्द जो उनके मुंह में आए, पहले विचार जो उनके मन में आया, वो कृष्ण नाम था। तो यह सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य वास्तव में कृष्ण के भक्त बन गए। क्योंकि पहले पहले सुबह जब हम उठते हैं तो हमें मन में क्या आता है, हमारा व्यवसाय, हमारे घर की समस्याएं और नाना प्रकार के सांसारिक चीजें। सुबह का समय इन सब कार्यों के लिए है। अगर हम केवल संसार की बातें सोचते रहेंगे तो रात का जो तमोगुण का प्रभाव था वो तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहला लाभ हमें ये है कि हम रात के तमोगुण के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं सुबह सुबह जल्दी उठकर, तो दिन के लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाती है, शुभारंभ। अभी हम देखते हैं कि सुबह लोग सैर करने जाते हैं अपने सेहत को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और खास करके बंबई में हमने देखा है कि लोग जब टहलने जाते हैं सुबह को, तो उनको अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ख्याल रखना चाहिए। कम से कम उस उद्देश्य से आए हैं तो कम से कम वो तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, आपस में मिलते हैं और सुबह सुबह 5 बजे से शेयर बाजार की बातें, व्यवसाय की बातें, कितना पैसा कहाँ रखा है, कितना उनको कहाँ से कितना मुनाफा मिल रहा है, या उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये सारी बातें सुबह सुबह से शुरू। खुद तो वो अपना मन प्रदूषित करते हैं, लेकिन इतनी जोर जोर से बातें करते हैं कि जो आने वाले जो आने जाने दूसरे लोगों का मन के मन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो सुबह का समय एक इतना अच्छा समय है, इसलिए हमें इसका शुभारंभ करना चाहिए भगवान के नाम के साथ। शास्त्र में बताया जाता है कि किसी कार्य की शुरुआत करने में भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी कार्य को समाप्त करने में भगवान का नाम लेना चाहिए, और किसी कार्य के करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में शुरुआत में बीच में अंत में भगवान का नाम होना चाहिए, लेकिन खास करके शुरुआत में भगवान का नाम लेकर ही हमें आरंभ करना चाहिए। तो जब हमारे दिवस की शुरुआत हम कर रहे हैं तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, इससे हमारे सारे आगे दिन के लिए हमारा चित्त जो है वो तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी जब रात को सो जाते हैं तो उनके रात के 12 घंटे यहां बहुत लंबा समय हो जाता है, और यहां पर प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारे जो नीचे के लोक हैं वो डूब जाते हैं प्रलय के जल में। और जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो कई बार वो भूल जाते हैं कि मैं कौन था या मुझे क्या करना है, सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, और फिर भगवान उनको आज्ञा देते हैं कि आप तपस्या करो, फिर अपने आप को तपस्या में स्थित करते हैं भगवान ब्रह्मा जी, और फिर से भगवान उनको अंतःकरण से मार्गदर्शन करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः, वही भगवान जो कि सुर या जो देवता है उनको भी मोहित करते हैं, वही भगवान ब्रह्मा जी जो कि प्रमुख देवता है उनको हृदय से ज्ञान देते हैं कि उनकी सेवा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें सेवा करनी चाहिए, सृष्टि का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी अपने दिन की शुरुआत में वो केवल 84 लाख योनियों की बात नहीं करते, ये योनि में ये करना, वो योनि में ये करना है, ये लोक में ये हमें बनाना है, कितने पहाड़ बनाने, कितने तालाब बनाने, सागर बनाने, नहीं, पहले भगवान का गुणगान करते हैं, सुबह सुबह उठकर स्तुति करते हैं भगवान की, फिर आगे चल के दिन की सेवा। तो ठीक उसी तरह से हम भी जब सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उठकर हमें और कोई बात नहीं करनी चाहिए, भले मंदिर की बात भी क्यों ना हो, केवल हमें भगवान की स्तुति करने में गुणगान करने में समय लगाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र और अन्य हम जो प्रार्थना करते हैं वही बस केवल हमें करना चाहिए, और कोई मैनेजमेंट की बातें नहीं, व्यवस्था की बातें नहीं, और इस ये और कोई बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरा लाभ है, दूसरा कारण है कि हमें सुबह सुबह उठकर ही भगवान का नाम लेना चाहिए और स्तुति पाठ करना चाहिए। तीसरा कारण ये है कि सुबह का समय जो होता है ऐसे कार्यों के लिए बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि ये समय सत्वगुण में होता है। शास्त्र में बताया जाता है कि प्रातः काल का समय सत्वगुण में है, दोपहर का समय और जल्दी जो शाम का समय होता है वो रजोगुण में होता है, और रात का समय तमगुण में। तो आध्यात्मिक कार्य संपन्न करने के लिए सत्वगुण का समय बहुत ही लाभदायक होता है। रजोगुण जब आ जाता है तो हम देखते हैं कि सारा वातावरण विचलित हो जाता है, लोगों का मन विचलित हो जाता है, और वो जब विचलित हो जाते हैं तो हमें भी विचलित करते हैं। तो लोग फोन करना आरंभ करते हैं, और लोग नाना प्रकार के, वहां से कोई चिल्ला रहा है, कोई अपना व्यवसाय के लिए अपने पदार्थ बेचने के लिए आया है, और घर में भी लोग इधर उधर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आने जाने चिल्लम चिल्ली में हमारी आध्यात्मिक जीवन ठीक से नहीं हो सकती है, लेकिन सुबह सुबह सब कुछ शांत रहता है। केवल जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं वही लोग सुबह उठते हैं, बाकी लोग आराम से 7-8-9 बजे उठ जाते हैं। तो इसलिए जब ये लोग सोए हुए होते हैं अपना काम हमें कर लेना चाहिए, फिर बाद में वो लोग जब उठ जाते हैं दंगा शुरू हो जाता है उनका। इसलिए हमें सत्वगुण के वातावरण का फायदा लेना चाहिए जो कि सुबह के समय होता है। इस प्रकार से हर जगह शास्त्र में बताया जाता है कि हमें जल्दी उठना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि रात को हम जल्दी सोएं। हाँ, प्रचार के कार्य में कभी कभी देर हो जाती है, जैसे कि कल हो गई और परसों हो गई और उसके पहले के दिन हो गई, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए कि हो सके तो हम जल्दी सो जाएं, ताकि जल्दी उठकर बिल्कुल मन को फ्रेश करके हम भगवान के नाम और कथा के ऊपर केंद्रित कर दें, ताकि जब हम जप में बैठे, हम क्लास में बैठे, हमें नींद न आए और हम पूरी तरह से इन सब कार्यक्रमों का फायदा उठा सकें। अब ये वंदना, स्तुति इत्यादि ये सब क्या है? ये तो केवल भगवान का गुणगान है। प्रार्थना स्तुति मतलब भगवान का गुणगान, बस इतना ही है। और किस चीज का गुणगान करते हैं? भगवान मतलब भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान के गुण, उनकी कृपा, उनकी लीलाएं, उनकी सामग्री, उनके भक्त, उनका धाम, उनका नाम, ये सब भगवान है। मतलब उसी श्रेणी में गिना जाता है। हालांकि भगवान के भक्त भगवान नहीं होते, परंतु जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान के भक्तों की बात तो दूर नहीं रह सकती, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्तों का भी गुणगान होता है, क्योंकि भगवान का गुणगान भक्तों के गुणगान के से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से एक राजा को उसके मुकुट से अलग नहीं किया जाता, तो भगवान के इर्द गिर्द इतने सुंदर प्रेम से युक्त भक्त रहते हैं, वो भगवान की शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का एक विशेष गुण है, इसको प्रेम माधुरी कहते हैं। प्रेम माधुरी मतलब हमेशा उनके इर्द गिर्द प्रेमी भक्त रहते हैं, और ये भगवान के लिए आभूषण के बराबर है। तब हम किसी का गुणगान करते हैं तो उसके सामग्रियों का, आभूषणों का गुणगान करते हैं। अरे देखो तो कितना फर्स्ट क्लास सूट पहना है इसने, वो भी रेमंड कंपनी का सूट पहना है। इसकी गाड़ी तो देखो कितनी चमक रही है, नई मारुति गाड़ी है। तो इस प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसकी जो सामग्री है उनकी भी प्रशंसा करते हैं, और जब उसकी सामग्री की प्रशंसा करते हैं तो खुद ब खुद उसकी प्रशंसा हो जाती है। तो जब हम भगवान की भक्तों की प्रशंसा करते हैं तो ये भगवान की स्तुति हो गई, क्योंकि ये भगवान का गौरव उससे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति भगवान की स्तुति करना मतलब इन सब चीजों की स्तुति करना। और ये भगवान का नाम, ये क्या है? क्या भगवान का नाम असलियत में कोई है? नहीं। हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमें नाम देते हैं, लेकिन भगवान के माता पिता कौन है? वो तो सारे जगत के माता पिता है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः, गीता में वो घोषणा करते हैं कि मैं ही सभी का पिता हूं, मैं सभी का प्रपिता हूं, मैं सभी का प्रपितामह हूं, माता हूं, सब कुछ हूं। तो उनको नाम देने वाला भला कौन हो सकता है? भक्त होते हैं। भक्त होते हैं जो कि भगवान को नाम देते हैं, नहीं तो भगवान को क्या नाम है, कौन नाम दे सकता है उनको? लेकिन भक्त जब भगवान को नाम देते हैं तो उनको अलग अलग गुण, लीला इत्यादि के हिसाब से देते हैं। जैसे कि भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या? सर्व आकर्षक। मतलब ये एक भगवान का गुण है कि वो सर्व आकर्षक है। और माखन चोर, माखन चोर मतलब ये भगवान की लीला है। लीला ये इतनी सुंदर है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो हमेशा उनका गुणगान करते हैं कि ये लीला कितनी सुंदर है। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होने के बावजूद वो थोड़ा सा माखन अपने पड़ोसी के घर में जाकर चोरी कर लेते हैं। ये बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है। तो माखन चोर ये एक लीला है। रणछोड़, वो रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं, तो ये भी एक लीला है। जनार्दन, जनार्दन मतलब क्या? जन अर्दन मतलब जनता के या प्रजा के, प्राणियों के दुख को दूर करने वाले, उनको जनार्दन कहते हैं। जन निवास, सारे प्राणियों को आश्रय देने वाले। तो इस प्रकार से उनके कार्य, उनके लीलाएं, उनके गुण, इनको जब हम नाम देते हैं, कोई शब्दों से इनको संबोधित करते हैं, तो वो भगवान के नाम हो जाते हैं। इसलिए अब जो भी नाम देखिए भगवान का, भगवान के हर एक नाम से उनका कोई ना कोई गुण, न तो उनकी कोई ना कोई लीला या कोई ऐसे कार्य से संबंधित है। भगवान का ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। है ऐसा कोई नाम आप सोच सकते हैं? कई बार हम समाज में देखते हैं कि माता पिता बच्चों को ऐसे नाम देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, है ना? श्री श्री राधा गोकुलानंद की, जैसे कि बंटी, सिंपी, कुछ भी नाम दे देते हैं, कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। एक बार हमने एक व्यक्ति से पूछा जो भी भक्त बने, उन्होंने अपना बच्चे का नाम कोई विचित्र रखा था, तो हमने सोचा कि शायद गलती हुई होगी हमारे सुनने में, तो हमने कहा कहीं नाम ऐसा तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये है। मैंने ये शब्द इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या मतलब इसका? नहीं कोई अर्थ नहीं है इसका। मैंने क्यों रखा? बस हमारे मन में आया तो हमने रख दिया। तो मनुष्य के लिए आजकल कोई भी नाम दे देते हैं, जो मन में आए सो नाम दे देते हैं, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान का हर एक नाम का अर्थ होता है, और ये अर्थ भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के नाना प्रकार के और जो भक्त हैं उनसे संबंधित होते हैं। भक्त वत्सल मतलब भक्त के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, भक्त उनके लिए बहुत प्रिय होते हैं, भक्त जनप्रिय, जो भक्तों के लिए बहुत प्रिय है और जो खुद जिनके लिए भक्त प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान का कोई भी नाम आप लीजिए, या तो गुण भगवान का होगा, या भगवान की लीला होगी, या ऐसे कोई ना कोई भगवान से संबंधित चीज होगी। तो इसलिए प्रार्थना मतलब क्या, स्तुति मतलब क्या? स्तुति मतलब भगवान का गुणगान, और जब भगवान का नाम कीर्तन हम करते हैं तो वो भी स्तुति है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हरे और कृष्ण और राम ये तीनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि वो सर्व आकर्षक हैं, सर्व शक्तिमान हैं और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ये भी भगवान का गुणगान हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय हम बोलते हैं, तो गोपाल कौन है? ये भगवान की एक लीला है, वो गायों का पालन करते हैं। गोविंद इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, गायों को संतुष्ट करने वाले गोविंद। तो हरेक दृष्टि से भगवान का नाम संकीर्तन करने से सारी स्तुतियां, सारी प्रार्थनाएं, सब कुछ उनमें आ जाते हैं, केवल भगवान का नाम का गुणगान करने से। इसलिए कलयुग के लिए ये नाम संकीर्तन का मार्ग जो है अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो भगवान का नाम होता है हर धार्मिक क्रिया का प्राण होता है, और भक्ति में कई अंग होते हैं, जैसे कि हम अर्चा विग्रह की पूजा आराधना करते हैं और कई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन इन सारों मंत्रों में भगवान का नाम अवश्य होता है। हर एक मंत्र में कोई ना कोई भगवान का नाम होता है, नहीं तो मंत्र पूरा नहीं होता। इस प्रकार से भगवान का नाम ही सब कुछ है, और जो व्यक्ति भगवान के नाम में रुचि लेने को सीख गया है उसके लिए और कोई भी मंत्रों का जाप करना और कोई अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें और कोई सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि 24 घंटे हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, वो नाम रुचि हमारे हृदय में जागृत नहीं हुई है। इसलिए हमें अन्य सारे पाठ, ये प्रार्थनाएं, स्तुतियां वगैरह हमें सुनना चाहिए। इसलिए जब भगवान की लीलाओं का गुणगान होता है तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए है, और जैसे हम ये प्रार्थनाएं वंदनाएं करते रहते हैं तो धीरे धीरे कर्म बंधन कट जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों को बताते हैं, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म बंधी निबंधनम छिंदंति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। वो कहते हैं अनुध्य, जब हम स्मरण करते हैं भगवान का तो ये क्या है? असिना, ये एक तलवार है। कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंति, छिंदंति मतलब काट के, इस तलवार से हम हमारे जो हृदय में कर्म ग्रंथि या जो हमारे पूर्व कर्मों की गांठ बहुत सख्ती से हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, केवल भगवान का स्मरण करने मात्र से उसको हम काट सकते हैं। जो हमारी हृदय की गांठ है वो इतनी सख्त है कि उसको आप उंगली से निकाल नहीं सकते। कई बार ऐसा हम अनुभव करते हैं संसार में कि रस्सी को इतना सख्ती से बांध देते हैं कि वो गांठ निकलता नहीं है उंगलियों से, तो क्या करना पड़ता है, रस्सी को काटना ही पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में रहे हैं, तीन गुणों का संग करते आए हैं, इसलिए कर्म ग्रंथि निबंधनम ये इतना सख्त हो गया है कि मालिश करने से निकालने से नहीं आएगा, काटना ही पड़ेगा। तो काटने के लिए कोई धार वाला कोई अस्त्र चाहिए, जैसे तलवार। तेरी तलवार क्या है? ये है भगवान का स्मरण। छिंदंति कोविदास्तस्य कोन कुर्यात् कथारतिम। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, कोविदः, जो कि भगवान के स्मरण का श्रवण का मार्ग अपनाएगा नहीं और अपने कर्म बंधन को काट डालेगा। कथा में रति, रति मतलब आकर्षण, रुचि। तो कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि भगवान की कथा में, भगवान के गुणगान में, स्तुति में रुचि नहीं लेगा और इस तलवार को हाथ में लेकर कर्म बंधन को काट डालेगा। ये कर्म बंधन ही हमारे जन्म मृत्यु के बंधन का कारण है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि हम सब ये भगवान के गुणगान के मार्ग को स्वीकार करें। यहां बताया जाता है श्रृणुयात और श्रावयेत। श्रृणुयात मतलब हमें खुद सुनना चाहिए, खुद जाप करना चाहिए और खुद जो जाप करते हैं, खुद जो बोलते हैं उसको श्रवण करना चाहिए। और श्रावयेत मतलब दूसरों को सुनाना चाहिए, अर्थात कीर्तन। तो यहां पर इस श्लोक में शिवजी श्रवण और कीर्तन दोनों मार्गों का उल्लेख कर रहे हैं। अगर हम केवल श्रवण करते हैं लेकिन श्रवण करके जो हमें लाभ मिलता है, ज्ञान मिलता है, साक्षात्कार मिलता है, आनंद मिलता है, अगर केवल अपने पास ही रख दें तो हम कंजूस बने। तो केवल श्रवण करना नहीं चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए। इसलिए दूसरों को हमें सुनाना चाहिए जो हमने सुना है, जो हमने जाना है। कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्या कष्ट करेंगे दूसरों को जाके बताना, कोई जानते नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करते, केवल हमको ठुकरा देते हैं, किसी को रुचि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें भी पहले रुचि थी। ऐसा नहीं है कि माँ के गर्भ से आते आते हम कृष्ण कृष्ण कह के आए, ऐसा तो नहीं है। किसी ने हमें भी प्रचार किया होगा और उस समय शायद हमारे मन में भी कितने सारे संशय हुए होंगे। तो जिन लोगों ने हमें कष्ट किया, जिन लोगों ने हमें इस ज्ञान को मार्ग में लाने के लिए कष्ट लिया, उसी तरह से हमें भी दूसरों को इस मार्ग में लाने के लिए हमें कष्ट लेना चाहिए। इसलिए केवल श्रवण करने से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जो हम श्रवण करते हैं उसका कीर्तन करके दूसरों को सुनाना चाहिए, श्रावयेत। लेकिन अगर हम केवल श्रावयेत करेंगे, केवल कीर्तन करेंगे लेकिन श्रृणुयात श्रवण नहीं करेंगे, तो क्या होगा, खाली हो जाएंगे। दो बार पांच मिनट कुछ बोल दिया, बाद में हमने कुछ सुना नहीं है, अंदर कुछ स्टॉक ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे दूसरों को कृष्ण के बारे में। जब हमने श्रवण नहीं किया तो कीर्तन कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमने श्रवण किया तो कीर्तन करना चाहिए और अगर कीर्तन करना है तो श्रवण करना चाहिए। तो दोनों श्रवण कीर्तन करना चाहिए और जब श्रवण कीर्तन दोनों होंगे तो स्मरण होगा खुद ब खुद अपने आप से। और स्मरण जब होगा अनुध्यासिना युक्ताह, तो तलवार तैयार। और फिर इस तलवार से अंदर का काम चालू, काटना धीरे धीरे धीरे, संसार से विरक्ति। इस प्रकार से संसार से मुक्ति प्राप्त करके हम भगवान के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले श्रवण, फिर कीर्तन और स्मरण, और सब कुछ भगवान के नाम पर, भगवान की स्तुति पर आश्रित है, आधारित है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंद में परीक्षित महाराज को उपदेश देते हैं, निवृत्त तर्षेरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। प्रभुपाद जी के लिए ये श्लोक बहुत प्रिय था। कृष्ण बुक उसके शुरुआत में ही पहले पेज में ही पन्ने पर उन्होंने ये श्लोक बतलाया है। ताकि कृष्ण बुक पढ़ने के पहले ही इस श्लोक को हम पढ़ें। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, निवृत्त तर्षय, केवल जो लोग जिनके हृदय में संसार को भोगने की तृष्णा तर्षय निवृत्त हो गई है, जिसका निवारण हो गया है, वही केवल भगवान का गुणगान कर सकते हैं। वास्तव में हम तो प्रयत्न कर रहे हैं गुणगान करना, लेकिन वास्तविक गुणगान जो होता है केवल वही लोग कर सकते हैं जो निवृत्त तर्षेर, जिनकी भौतिक भोग की तृष्णा से उनको वो मुक्त हो चुके हैं। भव औषधा श्रोत्र मनो अभिरामात, ये भव औषधि है, ये भव रोग के लिए बिल्कुल एक उपयुक्त औषध है। सबसे बड़ा रोग ये संसार में भव रोग है, खांसी, ठंडी, टीबी, कॉलेरा, ये सब बड़ी बीमारियां नहीं है, छोटी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है भव रोग। भव रोग मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्कर। और ये क्यों होता है? भगवान की विस्मृति की वजह से। भगवान को जब हम भूल जाते हैं तो बारंबार हमें यह संसार में जन्म लेना पड़ता है, और इसको भव रोग कहते हैं। तो कॉलेरा, टीबी इत्यादि के लिए औषधियां तो उपलब्ध है बाजार में, लेकिन यह भव रोग के लिए औषध क्या है? यह है भगवान का गुणगान। और इसका गुणगान, भगवान का गुणगान सुनने से, स्तुति पाठ करने से क्या होता है कि हमें मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, मनो अभिरामात। इसलिए हमें बार बार इसको सुनना चाहिए। गुणानुवादात, तो ये गुण का अनुवाद हमें करते रहना चाहिए। और इसलिए पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, कौन ऐसा पुमान, पुमान मतलब मनुष्य है, जो ऐसे गुणगान को स्वीकार नहीं करेगा। हरेर गुणानुवादात, उत्तम श्लोक गुणानुवादात, हरि का और एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनको सुंदर सुंदर श्लोकों से जिनकी स्तुति की जाती है, जिनको वंदना अर्पण किए जाते हैं, जिनका नमन किया जाता है सुंदर सुंदर कविताओं के रूप में, स्तुतियों के रूप में, तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद ये हमारे लिए प्रमुख मार्ग है, खास करके कलयुग के लिए। इसको भागवत मार्ग कहते हैं, भागवत धर्म। भागवत धर्म मतलब क्या? उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान श्री कृष्ण का के गुणों का वर्णन करना, श्रवण कीर्तन करना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन ऐसा मनुष्य है जो कि ऐसे उत्तम श्लोक गुणानुवाद में रुचि नहीं रखेगा? हर एक व्यक्ति रखेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं रखेगा ऐसे रुचि उसके हृदय में, तो वो क्या है? पशुघ्न। पशुघ्न मतलब, घ्न मतलब हत्या करना। तो जो पशु की हत्या करने वाला व्यक्ति है उसको पशुघ्न कहते हैं, मतलब बहुत क्रूर व्यक्ति, जिसका हृदय पत्थर के बराबर है। तो वही व्यक्ति जो क्रूर है, जिसके हृदय में कोई करुणा नहीं है, या जो अपनी आत्महत्या करना चाहता है आध्यात्मिक दृष्टि से, वही भगवान के गुणगान में, उत्तम श्लोक गुणानुवाद में रुचि नहीं रखेगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य समाज में हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के गुणगान में बिताए, भगवान की स्तुति पाठ में बिताए। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य है, और कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ये सब 24 घंटे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में रुचि नहीं है, इसलिए हम सब अन्य कार्य करते हैं, अन्य सेवा भी करते हैं। नहीं तो और क्या आवश्यकता है ये सारे कार्य करने के लिए? तो इस प्रकार से हमें महान आचार्यों के जो स्तुतियां हैं, जैसे शिवजी के हैं, उनको हमें सीखना चाहिए, हमको पाठ करना चाहिए। हम रोज सुबह उठते हैं तो गुरुवाष्टक, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित ये प्रार्थना हम रोज गाते हैं सुबह। उसके बाद में नरसिंह देव की स्तुति गाते हैं, ये भी आचार्यों ने लिखी हुई है, पुराणों से आती है। चैतन्य महाप्रभु भी ये स्तुति किया करते थे, चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। और उसके बाद में तुलसी देवी की प्रार्थना हम करते हैं, जो हमारे आचार्यों ने लिखी हुई है। उसके बाद में शिक्षाष्टकम हम पाठ करते हैं, चैतन्य महाप्रभु विरचित। इस प्रकार से महान आचार्यों ने और भगवान ने सिखाई हुई प्रार्थनाओं को हमें पाठ करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने खुद के पाठ, खुद की स्तुतियां क्यों नहीं पाठ कर सकते। हम खुद लिखेंगे हमारे प्रार्थना और भगवान से अर्पण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, अवश्य वैसा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें खतरा हो सकता है। तो हमें महान आचार्यों की विरचित जो स्तुतियां हैं, प्रार्थना है, हमें वो दोहराने चाहिए। इसके लिए कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो महान आचार्य हुए हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं। जिनकी स्तुतियां हम दोहराते हैं या जिनको हम भागवत में पढ़ते हैं, जैसे कि शिव जी है, चैतन्य महाप्रभु है, नरोत्तम दास ठाकुर है, कुंती महारानी है, अक्रूर है, पृथु महाराज है, इन सब की स्तुतियां इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि इनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है। और क्योंकि उनके हृदय में शुद्ध भक्ति है, इसलिए जो वो प्रार्थनाएं बोलते हैं, स्तुतियां करते हैं भगवान के, उन स्थितियों में आध्यात्मिक शक्ति है। ये स्तुतियां भक्ति से पूर्ण है। इसलिए जब हम ये स्तुतियों को दोहराते हैं तो वही भक्ति की शक्ति, वो शुद्धता, वो आध्यात्मिक शक्ति भी हमारे हृदय में आ जाती है। अगर किसी ऐरे गैरे का हम जो भजन बनाया हुआ, लिखा हुआ है, वो हम दोहराएंगे तो उसमें कोई हमें बल नहीं मिलेगा आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए जब महाभागवतों की जो स्तुतियां होती हैं भगवान की, उनको दोहराने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। ये पहला कारण है कि हम बड़े आचार्यों के, वैष्णवों के, महाभागवतों की प्रार्थना को दोहराएं और अपने प्रार्थनाओं को नहीं। दूसरा कारण ये है कि भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों के पदचिन्हों में चलते हैं, उनके भक्तों के आश्रय लेते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्र भावना से सीधे डायरेक्ट भगवान के पास चले जाएं, नहीं, उनके भक्तों के माध्यम से चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा, इसका मतलब है कि हमें जैसे शुद्ध भक्तों ने बतलाया है वैसे भगवान की ओर जाना चाहिए। जैसे शुद्ध भक्तों ने प्रार्थना की है इतिहास में, पूर्वज भक्तों ने, वैसे हमको चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई नया मार्ग भक्ति का निकालें, नहीं, भक्ति में कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है, लेकिन फिर भी इसका स्वाद नया नया है, लेकिन पद्धति पुरानी है। इसलिए जैसे उन्होंने सिखाया है, उन्होंने किया है, वैसे हमें उनके पदचिन्हों में चलना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम बड़ी सुंदर कविता लिख सकते हैं, हम संस्कृत के विद्वान हैं, तो हम अपनी कविताएं लिखेंगे और भगवान के सामने पढ़ेंगे। वो भी अच्छी बात है, अगर वास्तव में हमारे हृदय में भक्ति भावना है तो अवश्य हमें करना चाहिए। परंतु भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रार्थना अगर हम दोहराएंगे, जैसे हम रोज ब्रह्म संहिता गाते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति हम दोहराते हैं, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये नम्र हैं ये भक्त, क्योंकि दूसरे भक्तों की स्तुति गा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान का गुणगान करने के लिए योग्य हूं। हम स्वयं भगवान का गुणगान करने के लिए योग्य नहीं है, केवल दूसरे महान भक्तों का गुणगान हम दोहरा सकते हैं, बस इतना हम कर सकते हैं। गुणगान करना कोई साधारण बात नहीं है। जैसे आजकल समाज में किसी राजनीति में किसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं, शबाशी करते हैं, तो वो गुणगान अलग बात है, भगवान का गुणगान करना ये और ही निराली बात है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायम्। धर्म का या भक्ति का या भगवत तत्व का जो सार है, या इसका जो इनकी जो गूढ़ से गूढ़ तत्व है, ये कहां पाए जाते हैं? निहितम गुहायम, केवल शुद्ध भक्तों के हृदय में, अंतःकरण में पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान ने इन तत्वों को अंदर ही अंदर से प्रकाशित किया है, केवल उन भक्तों के हृदय में जो कि बिल्कुल निर्मल है और जिनके हृदय में भक्ति भावना है। जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अंतःकरण में सब ज्ञान दे दिया, तो सारे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व है, रहस्य है, वो शुद्ध भक्तों के हृदय में छुपे हुए हैं, तो हम उनको कैसे जान सकते हैं? हम कोई यंत्र देखकर, दूरबीन देखकर अंदर नहीं देख सकते शुद्ध भक्त के हृदय में कि क्या चल रहा है अंदर। लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान के, तो उनके हृदय की बात बाहर आ जाती है और जो गुड़ से गुड़ तत्व होते हैं वो भी हमारे श्रवण के लिए बाहर आ जाते हैं। तो इनके स्तुतियों को पढ़कर, उनके जाप करके, समझकर क्या होता है कि हम धर्म क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, भक्ति तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण ये है, वैसे तो कारण देते जा सकते हैं लेकिन जितने अभी मन में आ रहे हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा कारण ये है कि जब मृत्यु का समय आ जाता है, हमें अगर हमने इन महान भक्तों के स्तुतियां पाठ करने के लिए हमने अभ्यास नहीं किया होगा तो मृत्यु के समय हम इनको स्मरण नहीं कर पाएंगे। अंतकाल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। गीता में भगवान बताते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वही मेरे धाम को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है, हे अर्जुन। मतलब अंत काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जब तक हम श्रवण और कीर्तन स्तुति वगैरह नहीं कर रहे हैं जीवन भर में, तो अंत काल में स्मरण कहां से होगा? ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से गजेंद्र लीला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कि गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न राजा थे, और उस समय अगस्त्य ऋषि ने उनको शाप दिया था क्योंकि उनसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ था। अगस्त्य ऋषि का स्वागत नहीं किया उन्होंने, और अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रदुम्न राजा वास्तव में अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया था, जंगल में गए थे, ध्यान में मग्न थे आश्रम में। अगस्त्य ऋषि वह आए, उन्होंने सोचा कि ये नाटक कर रहे हैं ध्यान में रहने का, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, राजा हूं, ब्राह्मण का क्या स्वागत करूंगा। इसलिए उन्होंने अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम्हें जड़ योनि में चले जाओ, तुम हाथी बन जाओ। तो अगले जन्म में उनको हाथी बनना पड़ा, और आगे जब मगरमच्छ के साथ में युद्ध हुआ जल में त्रिकूट पर्वत के पास में, और युद्ध 1000 वर्षों तक चला, और अंत में जब गजेंद्र ने समझ लिया कि मेरा ये युद्ध जीतना अभी संभव नहीं लग रहा क्योंकि मैं जमीन का प्राणी हूं और ये मगरमच्छ जल का प्राणी है, और युद्ध जल में चल रहा है जो कि मेरा स्वाभाविक वातावरण नहीं है, इसलिए मैं कमजोर होते जा रहा हूं और ये मगरमच्छ ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहा है। इसलिए मेरे लिए अब कोई चारा नहीं रहा, कोई आश्रय नहीं रहा सिवाय भगवान के। 1000 वर्ष गजेंद्र ने अपने बल, अपने बुद्धि, अपने मित्रों से, अपने हाथी समाज के ऊपर विश्वास रखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में जब एक ही मार्ग रह गया तो गजेंद्र ने भगवान श्री हरि का आश्रय लिया और सुंदर प्रार्थना अर्पण करना आरंभ किया। लेकिन प्रश्न ये आता है कि हाथी को प्रार्थना कहां से आए? कौन से पाठशाला में हाथी गया था? कौन से गुरुकुल में गया था? किस गुरु का आश्रय लिया था कि उसने ये सब स्तुतियां पढ़ ली थी? तो बताया जाता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जो प्रार्थनाएं की थी भगवान की कृपा से उनको इस जन्म में वो याद आ गई। तो अगस्त्य ऋषि ने जो शाप दिया था वो वास्तव में शाप तो क्या, एक वरदान था, क्योंकि जल्दी से जल्दी एक जन्म में ही वो भगवान के धाम में लौटकर जा सके। तुरंत जब ये प्रार्थना किए गजेंद्र ने तो अपने गरुड़ पर सवार होकर नारायण स्वयं वहां आए। मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन लोगों के लिए जो हमेशा मेरा चिंतन मनन करते हैं, निस्वार्थ ढंग से मेरी सेवा करते हैं, चिंतन मनन 24 घंटे जिनके मन में चलता है मेरे बारे में, शीघ्र ही न चिरात, चिर मतलब लंबा समय, न चिरात मतलब बहुत ही जल्दी, मैं स्वयं आ जाता हूं। तेषाम अहम अहम मैं ही आता हूँ, समुद्धरता मैं उनको उद्धार करने वाला हूँ। कहां से? मृत्यु संसार सागरात, तो मृत्यु संसार के सागर से समुद्धरता मैं उनको स्वयं उद्धार करके ले जाता हूँ। भवामी मैं उद्धारक बन जाता हूँ। न चिरात पार्थ, देर नहीं लगाता है अर्जुन, मैया वेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में समा गया है। इसलिए इस वचन का पालन करते हुए भगवान जल्दी से आए गरुड़ के ऊपर और मगरमच्छ की हत्या कर दी सुदर्शन चक्र से और गजेंद्र की रक्षा कर दी। तो गजेंद्र ने ये प्रार्थना अपने पिछले जन्म से किए थे, वो अभ्यास करने की वजह से उनको यह स्मरण आए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोपि सः, पूर्वाभ्यासेन तो पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था आध्यात्मिक जीवन में स्तुति पाठ करने में, ह्रियते यवशोपि सः, स्वाभाविक तौर से इस जीवन में वो एक झुकाव या एक वृत्ति आ जाती है। इसलिए गजेंद्र को ऐन समय पे जब वास्तव में जरूरत थी वो स्तुतियां याद आ गईं। तो इसलिए हमें भी मृत्यु के समय इन सारे पाठों को याद करना होगा। लेकिन कैसे याद कर पाएंगे अगर जीवन भर में हमने अभ्यास नहीं किया तो? इसलिए इन महान आचार्यों की स्तुतियां हमें बार बार पढ़ने चाहिए, पढ़ाने चाहिए, सुनाने चाहिए। इसलिए हम रोज इनका पाठ करते हैं, रोज शिक्षाष्टकम पाठ करते हैं, रोज हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, रोज ब्रह्म संहिता गाते हैं, रोज गीता भागवत पाठ करते हैं। इसलिए है ताकि अंत काल में हमें इनका स्मरण आए। पांचवा कारण जो मन में आ रहा है वो ये है कि अगर हम चाहें कि हम खुद भगवान के प्रति सुंदर स्तुतियां गाएं और करें, और महान भक्तों की स्तुतियां करना इतना आवश्यक नहीं है, तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की स्तुति करने के लिए शुद्ध चित्त चाहिए। क्योंकि ये सारी प्रार्थनाएं जो कि हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं और जैसे कि अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं जैसे ब्रह्म संहिता, ये आध्यात्मिक शक्ति के से निर्माण होते हैं, भौतिक शक्ति से नहीं। अगर भौतिक शक्ति पे हम कुछ गुणगान करना चाहे भगवान का तो नहीं हो पाएगा। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो जब भगवान ने उनके शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के सर से किया तो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से प्रफुल्लित हो उठे वो, और फिर आगे चल के वो सुंदर सुंदर स्तुतियां करने लगे एक के बाद एक, जो कि साधारणतः एक 5 साल के बालक के लिए संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने किए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान ने आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन दे दिया था, और उस इंजेक्शन को प्राप्त करके उस आध्यात्मिक शक्ति से ये स्तुतियां आईं। इसका मतलब है कि जो भी सुंदर महान भक्तों की प्रार्थना हम सुनते हैं पढ़ते हैं, ये भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होते हैं, आध्यात्मिक दिव्य शक्ति से उत्पन्न होने वाले हैं। और अगर हमारे हृदय में वो दिव्य शक्ति आध्यात्मिक शुद्धता नहीं है तो वो प्रार्थना कहां से उत्पन्न करेंगे हम? इसीलिए बाहर के जो व्यवसाय की दृष्टि से भजन कीर्तन करने वाले लोग होते हैं, अपना अपना कैसेट वगैरह निकालते हैं, जो भक्त नहीं होते, जो परंपरा में नहीं आते हैं, केवल पैसे के लिए और समाज में एक प्रसिद्धि के लिए जो ऐसा करते हैं, जो भजन कीर्तन का कैसेट निकालते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन कीर्तन भजन में कोई आध्यात्मिक बल नहीं है। जैसे ये लोग हमेशा ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें दर्शन दे दो, ऐसे इनकी प्रार्थना रहती इस लाइन में, लेकिन प्रभु उनको क्यों दर्शन दे? प्रभु कौन है उनको ठीक से स्पष्ट रूप से नहीं मालूम, और उतनी तरह से श्रद्धा से उनको एक दृढ़ विश्वास भी नहीं है कि यही प्रभु है। तो इस प्रकार से केवल वही लोग वास्तविक प्रार्थना गुणगान कर सकते हैं भगवान का, जिनका हृदय भक्ति शक्ति से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से कई कारण हो सकते हैं जिसके लिए हमें महान भक्तों की स्तुतियां रोज पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए और सुनाने चाहिए। और भी हो सकते हैं, लेकिन जितना हमारे अभी मन में आया उतना सुनाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान के गुण अनंत हैं, तो इससे जो भी संबंधित चीज है वो अनंत है। इसके लिए कारण का लिस्ट भी और बढ़ता जाए और भी चलता जाएगा, वो भी अनंत हो सकता है। लेकिन खैर, समय हमारे लिए अनंत नहीं है, इसलिए यहाँ कथा समाप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका टिप्पणी, मतभेद, विरोध, प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला कि कृष्ण भगवान का कोई नाम नहीं होता, भक्त उन्हें नाम देते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कृष्ण और कृष्णा में एक्चुअल भगवान में कोई अंतर नहीं है?
क्योंकि भगवान का से संबंधित जो भी शब्द होते हैं उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के किसी भी नाम में और उनमें अंतर नहीं है। केवल नाम की बात क्यों? भगवान के किसी भी जो भी संबंधित चीज है उसमें और भगवान में अंतर नहीं है। जैसे कि उनका धाम, जैसे कि उनकी सामग्री, जैसे कि उनके कपड़े, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। आध्यात्मिक स्तर में वस्तु में और नाम में अंतर नहीं होता, ये है आध्यात्मिक जगत। लेकिन यहां पर अंतर होता है। जब हम पानी 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 कहते हैं तो हमारी प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास बढ़ जाती है। हमें वास्तव में पानी वस्तु जो है वो लेना पड़ता है, पी लेना पड़ता है, तब हमारी तृष्णा जो है प्यास बुझ जाती है। तो इस संसार में वस्तु में और वस्तु के नाम में अंतर होता है। लेकिन भगवान के धाम में आप जब गोलोक वृंदावन जाएंगे तो आप पानी कहिए, तुरंत पानी आकर आपके प्यास को बुझा देगा। तुरंत आपको आगे जाकर कहीं ग्लास लेना, फिल्टर कहाँ है ढूंढना, सब जरूरी नहीं है। पानी पानी सोचिए, कहिए भी नहीं, सोचिए, बस आपकी प्यास बुझ जाएगी। जो भी आप चाहें केवल सोचिए उसके बारे में, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए वो चिंतामणि धाम है। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी केवल चिंतन करने से, सोचने से। और कोई बात?
कृष्ण का इंग्लिश मीनिंग है ऑल अट्रैक्टिव, तो अगर हम सिर्फ ऑल अट्रैक्टिव बोलेंगे तो क्या हमें वही स्वीकृति मिलेगी?
ऑल अट्रैक्टिव बोलते जाइए, लेकिन ये अंग्रेजी शब्द इतना ऑल अट्रैक्टिव नहीं है। कृष्ण में जो एक आकर्षण है वो ऑल अट्रैक्टिव में नहीं है, वो भाव नहीं आता। हालांकि भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि केवल भाषा का फर्क है। आप किसी भी भाषा में बोलिए, चीन की रूस की भाषा में भी बोलिए, सर्व आकर्षक जो है। लेकिन अगर आपके मन में आप उन्हीं को पुकार रहे हैं, उनका रूप आपके मन में है कि हाँ उसी को पुकार रहे हैं हम, कोई फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री को नहीं, तो फिर भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में जो रुचि चाहे कृष्ण में, वो रस किसी दूसरे नाम में नहीं है। लेकिन फिर भी सर्व आकर्षक ऑल अट्रैक्टिव कहेंगे, लाभ तो होगा। लेकिन कृष्ण 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 कहने से जो लाभ होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा रस है, तो वो उसमें नहीं होगा। ठीक है, और कोई अवतीर्ण लेने वाले हैं, इसलिए उनकी उस रूप में सेवा करने के लिए हम अभी सब जा सकते हैं। हरे